पंचदशी के कुटस्थ प्रकरण का 44वां श्लोक। पहले उच्चारण। नैष्कर्म सिद्धा सिद्धावपि एवं आचार्य स्पष्टमीरितम् सामानाधिकरण्यस्य बाधार्थत्वम् अतोऽस्तु तत्। नैष्कर्म सिद्धावपि एवं आचार्य स्पष्टमीरितम् सामानाधिकरण्यस्य बाधार्थत्वम् अतोऽस्तु तत्। तो प्रसंग तो सब मालूम आपको। आभासवाद और प्रतिबिंबवाद दोनों को के मतों को लेकर विचार कर रहे हैं। तो पंचदशीकार अपने आभासवाद के समर्थन में वार्तिककार मतलब सुरेश्वराचार्य जी के वचन का समर्थन दे रहे, वो भी हमारे मत का समर्थन कर रहे। कौन? वार्तिककार। वार्तिककार कौन है मालूम है ना? सुरेश्वराचार्य जी। इनका एक नाम विश्वरूपाचार्य भी है। हाँ, विश्वरूपाचार्य भी है सुरेश्वराचार्य जी का। तो देखिए, सामान्य रूप से सिद्धांत यह है कि जीव और ब्रह्म का मुख्य सामानाधिकरण होता है, सामान्य बात है। और यह प्रतिबिंबवाद के द्वारा बात कही जाती है। और दूसरी सामान्य बात है कि जगत और ब्रह्म का बात समानाधिकरण होता है, ये तो पक्की है। पर यहां पर पंचदशीकार जीव और ब्रह्म का भी बात समानाधिकरण ही मान रहे हैं, समझे ना? पंचदशीकार जो प्रसंग चल रहा वर्तमान में 44 श्लोक का 43 का, कि जीव और ब्रह्म का बात समानाधिकरण कर रहे। क्यों कर रहे? देखिए, शब्द वही है, जैसी व्युत्पत्ति करेंगे वैसा अर्थ निकलेगा, तो वैसा हम संगति लगाते हैं। तो यहां जीव शब्द का अर्थ पंचदशीकार वार्तिककार अर्थ क्या करते हैं? सोपाधिक जीव। सोपाधिक मतलब कि बुद्धि उपाधि वाला जीव, अंतःकरण उपाधि वाला जीव, जिसको चिदाभास कहते हैं। तो उपाधि का बाद होने के बाद तब जाकर जीव और ब्रह्म का सामान्यकरण होगा, ये बात यहां पर पंचदशीकार कह रहे हैं। और अपने बात के समर्थन में वार्तिककार के वाक्य का उद्धरण दे रहे हैं कि वे भी ऐसा मानते हैं। तो इतना पक्का रखना कि वार्तिककार मन सुश्राचार और पंचदशीकार और सर्वज्ञात मुनि, ये जो आचार आभासवाद वाले हैं, और जितने आचार लगभग सभी आचार्य प्रतिबिंबवाद को मानते हैं, जिसमें विवरणाचार्य हैं मुख्य। प्रकाशात्म्यति इनका नाम है प्रकाशात्म्यति। ये सब क्या मानते? प्रतिबिंबवाद। ये तो पूरा कंड हो गया, तीन चार दिन से चल रहा। दोबारा देखो, कल भी हुआ था ना। यदि आपको देखना है ना तो देखना, ग्रंथ दो ग्रंथ विशेष है। एक ग्रंथ है, कल बताया था आपको, सिद्धांत लेस संग्रह। उसमें बिल्कुल साफ साफ सारे आचार्यों के मत का सिद्धांत का बहुत संकलन किया है। एक ग्रंथ है 15वीं शताब्दी, अप्पे दीक्षित के द्वारा किया गया है, प्रमाणिक ग्रंथ है। और दूसरा ग्रंथ है सिद्धांत बिंदु, दो आचार्य का दस श्लोकी है ना, न भूमि न तोय, इसके ऊपर व्याख्या है। उसी व्याख्यात्मक ग्रंथ का नाम है सिद्धांत बिंदु। इस पर बढ़िया से चित्रण किया है, अलग अलग देखो ऐसा है ना, चीज एक ही है। जैसे मान लो आधुनिक समझने के लिए एक गिलास है, उस गिलास में आधा जल आधा खाली है, एक क्या बोलता है गिलास आधी खाली है, ये भी ठीक है आधी खाली। भाई जोर से प्यास लगी गले तक, दो गिलास पानी पीना है, गर्मी का दिन और कंजूस आदमी आधा गिलास दिया तो क्या बोलते हैं गिलास आधी खाली है। दूसरा क्या बोलता है आधा भरा, दोनों बात सही है समझने के लिए। प्यासे के लिए वो क्या है आधी गिलास खाली है, जो प्यासा वो बोलेगा, जो प्यासा है ना वो बोलेगा आधी गिलास खाली है जरा भर दो भाई। जिसका पेट भरा है बोला आधी गिलास भरी है बहुत है, उसको प्यास नहीं लगा, खाली फॉर्मेलिटी औपचारिकता करनी है, तो दोनों बात सही है ना अपनी जगह। ऐसे यहां पर आभासवाद वाले उपाधि युक्त जीव को मानते हैं, मतलब कि अंतःकरण जो उपाधि है, जो बुद्धि उपाधि ना, उस उपाधि से विशिष्ट चैतन्य को जीव मानते हैं आभासवाद वाले। और आभासवाद का सिद्धांत है समझने के लिए कि दर्पण में दिखाई देने वाला जो आपका चेहरा है मुख है वह वहां पर अनिर्वचनीय रूप से उत्पन्न हुआ। जब देखते हैं ना, क्योंकि हमारा मुख पूरब है, उसका मुख पश्चिम है, इनका सिद्धांत है अनिर्वचनीय दर्पण में रूप की मुख उत्पत्ति हुई और उसका नाश होता है बाद होता है, समझे ना। मुख्य तो आपका गर्दन वाला मुख ही है, वही सही है वही सत्य है, परंतु जो दर्पण में दिखाई पड़ने वाला जो मुखारविंद है वो आभास है, प्रतीति मात्र है, मिथ्या है, काल्पनिक है और उत्पन्न हुआ और उसका बाद होगा, कैसे ज्ञान से बाद होगा। इसी बात को समझाएंगे प्रतिबिंब मत वाले कि भाई दर्पण में मुख उत्पन्न हुआ नहीं, तीनों काल में दर्पण में मुख उत्पन्न हुआ, न पहले था न आगे होगा न अभी है। जो दर्पण में दिखाई पड़ने वाला मुख है ना वो सत्य है, जो गर्दन पर मुख है ना वही बिल्कुल दर्पण का मुख है। ये द्वैत की प्रतीति मिथ्या है, वो दो नहीं है, है तो एक ही, समझे ना। मुख तो एक ही है गर्दन पर जो हमारे यहां है, पर वहां जो अलग दिखाई दे रहा ना वो द्वैत की प्रतीति मिथ्या है। तो इनके यहां ना दर्पण मुख उत्पन्न हुआ न उसका बाद होता है, बल्कि सत्य है, जो वह है वही है। इसलिए हम कहते ना जीवो ब्रह्मैव नापरः, जीव ब्रह्म है दूसरा नहीं है, ये हो गया प्रतिबिंबवाद का मत। और इसके समर्थक बहुत हैं, सभी हैं लगभग, हाँ सभी समर्थक है प्रतिबिंबवाद के, ये पंदसीकार वार्तिकार दोचा को छोड़ के प्राय सभी प्रतिबिंबवाद मानते हैं। तो यहां पर पहले आप कल सुन चुके हैं कि अहम ब्रह्मास्मि में जीव का ब्रह्म के साथ एकता होता है। तो पूर्व पक्षी ने कहा कि भाई जब आप ऐसा मानेंगे कि जीव का बाद हो जाता है, तो जीव का जब तत्व ज्ञान से बाद हो गया तो एकता कैसे होगा हम ब्रह्मास्मि का, फिर क्या बोलेगा अहम न ब्रह्म, अहम मतलब मैं मतलब कि अंतःकरणावचिन्न चेतन ब्रह्म न ब्रह्म नहीं, ऐसा बोलना चाहिए, वैसा तो कोई बोलता नहीं, हम ब्रह्मास्मि बोलते। तब व्याख्या किया, उसकी व्युत्पत्ति किया, इसको बोलते व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति क्या किया कि जीव का अर्थ प्रतिबिंबवाद वाले क्या करते कुटस्थ करते हैं, तो कुटस्थ के साथ ब्रह्म के साथ एकता हो जाएगी। तो अहम ब्रह्मास्मि में अहम का अर्थ क्या है लक्ष्यार्थ, सीधी बात, अहम का अर्थ क्या है लक्ष्यार्थ, लक्ष्यार्थ मतलब कुटस्थ। तो कुटस्थ के साथ अहम ब्रह्मास्मि की में कोई बाधा नहीं, ऐसी संगति लगाए। पर जो लोग मतलब पंदसीकार जीव कार्य करेंगे औपाधिक चैतन्य, तो उनके मत से बात समानाधिकरण होगा, जीव और ब्रह्म के साथ बात समानाधिकरण। पर ऐसा व्यासपीठ से नहीं बोलना, नहीं तो पंदसी को नहीं पढ़ा होगा ना, तो आपको बोलेगा ये क्या बोल गया अशुद्ध। पंदसी का अनुसार सिद्ध ठीक है। सामान्य रूप से जो व्यवहार जगत में बोला जाता है कि जगत ब्रह्म का है मुख बाद समानाधिकरण, और जीव और ब्रह्म का मुख समानाधिकरण, ये सामान्य बात है। परंतु पंदसी का जीव के साथ भी बाद समानाधिकरण ही कह रहे, क्यों? यहां जीव का अर्थ है औपाधिक जीव, तो उपाधि के नाश उसका नाश सीधी बात, ऐसी यहां पर व्याख्या। अब अपने मत के समर्थन में वार्तिककार के विचार को दिखला रहे कि भाई मैंने, बल्कि वार्तिककार भी समर्थन करते हमारे विचार का। देखो लिखा ना, निष्कर्म सिद्धौ अपि, निष्कर्म सिद्धि जो ग्रंथ है ना उस ग्रंथ में, एवं मतलब ऐसे ही, ऐसे कैसे कि जीव का बाद समानाधिकरण होता है, मुख समानाधिकरण नहीं है, मतलब कि ग्रंथ है, हाँ वार्तिक का लिखा उनका है। तो निष्कर्म सिद्धि माचार्य क्या कहते हैं कि समानाधिकरण्यस्य बाधार्थत्वम बाद समानाधिकरण, किसका? जीवात्मा के साथ है, अतो अस्तु इसलिए हो जाए। मतलब अपने मत के समर्थन में वार्तिक कार्य के वचन का यहां पर प्रमाण दिया, समर्थन दिया, सपोर्ट किया कि मैं ही नहीं बल्कि वे भी ऐसा मानते हैं। पर सामान्य रूप से बुद्धि में बैठा कर रखना कि जीव का ब्रह्म से मुख समानाधिकरण होता है, बाद नहीं होता, पर इनके अनुसार, इनके मतलब पंदसीकार वार्तिककार के अनुसार जीव ब्रह्म का बाद समानाधिकरण है। पर यहां जीव का अर्थ है सोपाधिक जीव, सोपाधिक चैतन्य, अंतःकरण बुद्धि से विशिष्ट चैतन्य, तो उपाधि के विलय से उसका नाश। और उनके यहां जीव का अर्थ है कुटस्थ चैतन्य मुख्य। हाँ, मुझे पता था कि समझ में नहीं आया है, उसी पर आ रहा था, उन लोगों के बोलने के पहले उसी जगह आ रहा था जहां आप जिज्ञासा कर रहे, या सुन तो लिए पर मुझे पता था कुछ समझे नहीं है। देखो समानाधिकरण का अर्थ है, समान का अर्थ एक, इक्वल बराबर, तो समानम एकम अधिकरणम ययो तयो समानाधिकरण्यम, ये परिभाषा है। जिन दो वस्तुओं का एक आधार हो उनका परस्पर समानाधिकरण्य कहा जाता है, आधार। एक सूत्र है ना आधारोधिकरणम, आधार को अधिकरण कहते हम, जिसको हम अपनी भाषा में आधार बोलते ना, उसी को संस्कृत भाषा में अधिकरण कहते हैं। वो सूत्र है ना आधारोधिकरणम। हाँ देखिए, दोनों मंत्र है, आधार बोलेंगे तो आधे शब्द आएगा, है ना, अधिष्ठान बोलेंगे तो अध्यस्त आएगा। अपने शब्दों का भी ना बड़ा वैज्ञानिक प्रयोग है। यदि कि डंडा है, रस्सी, रस्सी या डंडा है, तो इस डंडे के ऊपर सांप लिपटा है ना, तो सांप का ये जो डंडा है ये आधार कहलाएगा और सांप आधेय हो जाएगा। तो आधार आधेय में दो चीजें अलग अलग होती हैं, और अध्यस्थ और अधिष्ठान में एक ही चीज होता है, समझे ना। अध्यस्थ में अधिष्ठान में एक ही चीज होता है, अध्यस्थ काल्पनिक होता है, दोनों मंत्र ये है। तो यहां पर देखिए घटाइए, ये टेबल है ना, ये आपका आधार मान लो हो गया, इसी आधार को हम अधिकरण कहते व्याकरण की भाषा में। अब इस टेबल पर देखो पंदसी पुस्तक भी है ना, और ये देखो चाबी भी है, तो हम कह सकते हैं कि पंचदशी का समानाधिकरण इस चाबी के साथ है, क्योंकि तो दोनों एक ही आधार पर है, दोनों जो है ना इसी टेबल के आधार पर चाबी भी रखी है और हमारा पंचदशी पुस्तक भी। तो बोलेंगे कि पंचदशी का समानाधिकरण इस चाबी के साथ है, और चाबी किसके साथ है? पुस्तक के साथ। तो एक जहां पर आधार हो ना दो चीजों का, तो दो का परस्पर समानाधिकरण बोला जाता है। समानम मतलब एकम, अधिकरण मतलब आधार, ययो तयो समानाधिकरण, जिन दो वस्तुओं का उसको समानाधिकरण कहते हैं। अब यहां घटाओ, अब देखो यहां पर जो आपका ब्रह्म और कुतस्थ दोनों का सामानाधिकरण है। क्यों है कि चैतन्य रूपी अधिष्ठान में कुतस्थ भी है और ब्रह्म भी है। ब्रह्म मतलब तत्पद का लक्ष्यार्थ शोधित, कुतस्थ मतलब जीव पद का शोधित मतलब लक्ष्यार्थ। वाच्यार्थ बोलते हैं जिस शब्द को सुनने के बाद नियम से जिस अर्थ की प्रतीति हो उसका नाम वाच्यार्थ है। वाच्यार्थ कहो, सक्यार्थ कहो, अविदावृत्ति, सब तीनों एक ही चीज है। अविदावृत्ति हो, वाच्यार्थ हो या सक्यार्थ हो, तीनों एक ही चीज है। जैसे मान लो हमने कहा गंगायाम पंच नाव संति, गंगा में पांच नाव है, ये हो गया आपका वाच्यार्थ। जैसा बोला वैसा समझा आपने, गंगा जी का अर्थ हुआ जलधारा, उसमें लकड़ी की पांच नाव तैर रहे घूम रहे, ये हो गया आपका क्या वाच्यार्थ। और यही हमने कहा गंगायाम महल, नहीं घोष तो पुरानी बात हो गई ना, वो अब घोष नहीं मिलेगा, महल महल संभव। अब तो बड़े बड़े महल बन रहे गंगा किनारे, जमुना के सागर किनारे। तो हमने कहा कि वो समुद्र में जो है ना पांच बड़े बड़े महल हैं, तो अर्थ क्या निकलेगा समुद्र में संभव नहीं है। तो समुद्र के किनारे आस पास जो है ना पिलर डाल के पांच बड़े बड़े महल मकान बनाए, झोपड़ी का जमाना गया अब नहीं है। हाँ टावर, टावर बोल सकते हैं, टावर टावर, ये लक्ष्यार्थ हो गया। तो पानी में संभव नहीं, तो अर्थ क्या उसके किनारे आस पास पांच टावर पांच महल, इसको लक्ष्यार्थ बोलते हैं। ऐसा घटा लो तो हम कहते हैं ना अहम ब्रह्मास्मि, अहम शब्द का वाच्यार्थ हो गया मैं। मैं मतलब कि साढ़े तीन हाथ वाला शरीर, तो शरीर के साथ ब्रह्म का एकता हो नहीं सकता, ये वाच्यार्थ हो गया हम। मैं बोलता हूं ना कि कौन, तो बोलता मैं भाई, संस्कृत में हम और हिंदी में मैं बोलते वही बात है, एक ही अर्थ है। तो आप बोलते मैं ना, जब बोलते मैं तो मैं का अर्थ आप करते हैं साढ़े तीन हाथ वाला शरीर, बोलते छाती पर मैं बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं, ये वाच्यार्थ हो गया। और लक्ष्यार्थ हो गया कि जो मैं का शोधित शुद्ध हो गया कुटस्थ, ये लक्ष्यार्थ है, समझे ना। और उधर देखो ब्रह्म, तो ब्रह्म का वाच्यार्थ हो गया सर्वज्ञ विशिष्ट चेतन, जो माया वचिन चेत ईश्वर हो गया वाच्यार्थ। और लक्ष्यार्थ है आपका अधिष्ठान चेतन कहो, शुद्ध चेतन। बड़े ग्रंथों में शुद्ध को भी हटा दिया है, शुद्ध बोलेंगे तो शुद्ध की भ्रांति होगी, इसलिए सीधा केवल ब्रह्म अर्थ किया ब्रह्म। तो यहां पर जो अधिष्ठान चेतन, अधिष्ठान चेतन रूपी आधार में कुटस्थ भी और ब्रह्म भी, तो दोनों का सामान्यधिकरण हो गया। आप कॉपी में लिख के देखो ना, एक ऐसा बना दो, दो डंडे खींच दो, इधर कुटस्थ इधर ब्रह्म, दोनों का अधिष्ठान चेतन में एकता हो गई। जैसे टेबल पर दोनों है ना, चाबी भी है पुस्तक भी है दोनों चीज, ऐसे कुटस्थ और ब्रह्म दोनों चेतन रूपी आधार में एक हो जाते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि जीव का ब्रह्म का मुख्य सामानाधिकरण, मुख्य मतलब बिना बाद हुए वैसे एक वैसे, और जगत का ब्रह्म का बाद समानाधिकरण होता है बाद। ये जीते जी जगत ब्रह्म एक हो नहीं सकते है? नहीं, ब्रह्म बोलना चाहिए ब्रह्म। ब्रह्म क्यों बोलते हैं, वो भावी वृत्ति से भावी। जैसे कि गीता में कहीं भी देखो तो बोलते हैं राजा शब्द किसके लिए, दुर्योधन के लिए। बेचारा राजा तो कभी बना ही नहीं जीवन में, फिर भी क्या बोलते हैं, राजा दुर्योधन सदा राजा हुआ बोलते ना। तो राजा शब्द का प्रयोग किया दुर्योधन के लिए, क्योंकि भविष्य में होने वाला है। आपने देखा होगा ना चुनाव में सभी पार्टी वाले क्या बोलते अपने उम्मीदवार को, प्रधानमंत्री वो थोड़ा बनने वाला है, एक बनेगा दस थोड़ा बनेंगे। पर भविष्यत वृत्ति से, भविष्यत मतलब चुनाव के बाद संभावना है शायद बन जाए, इसका नाम है भविष्यत वृत्ति, भविष्य में शायद बन जाए संभावना है। ऐसे यहां पर भविष्यत वृत्ति से ब्रह्म शब्द का प्रयोग करते हैं, पर बोलना चाहिए ईश्वरी। देखो जब जीव बोलना तो ईश्वर बोलना है ना, जब कुटस्थ बोलना तो ब्रह्म बोलना, क्योंकि जीव उपाधि विशिष्ट का नाम है, ईश्वर नाम है उपाधि विशिष्ट, वहां माया और यह अंतःकरण। अविद्या उपाधि इनके पंदसी कार्य के अनुसार है, और अंतःकरण उपाधि है आपके विवरणकार और आपके अवच्छेदवाद के अनुसार, भावती कार के अनुसार, चीज एक ही है, समझने समझाने का बोलने का तौर तरीका अलग अलग है, पर बात वही। हाँ ये देखो जगत, हाँ पक्के होता है लोग, गिरीश भाई पक्के होते, एक इंच भी कोई बात नहीं छोड़ते हैं, बाल का खाल निकाल लेते हैं, निकालना चाहिए अपने यहां सही शब्द नहीं है, अपने यहां क्या शब्द है जी, हाँ तो देखो ऐसे होता है, ये जो ब्रह्म है ना, ब्रह्म के साथ जगत का एकता जीते जागते हो नहीं सकता, क्योंकि जगत क्या है, अनात्मा है, दुख रूप है, परिच्छिन्न है, जड़ है, दृश्य है, गिन लो जड़त्व दृश्यत्व अनात्मत्व है ना, जड़ का स्वभाव। अच्छा ब्रह्म का क्या है, शुद्ध बुद्ध नित्य आनंद, या दुख या आनंद, ये संसार अनित्य ब्रह्म नित्य, तो कहां से एकता होगी, संभव है ही नहीं। जैसे कि रात और दिन का सामानाधिकरण संभव नहीं, भाई जब दिन होगा तो रात नहीं, रात हो गए तो दिन नहीं, जैसे रात दिन का दोनों का सामानाधिकरण का अर्थ एकता, एक जगह दोनों बैठ नहीं सकते, भाई यहीं पर रात यहीं पर दिन होना संभव नहीं, यही प्रकाश हुई अंधकार हो संभव नहीं, जब प्रकाश होगा तो अंधकार नहीं, अंधकार नहीं तो प्रकाश नहीं, पर यहां संभव है, हमारे प्रकाश भाई भी है और अंधकार भी है, अंधकार पीछे है आगे नहीं पीछे, तो देखो न्याय है ना, न्याय दर्शन, तो न्याय दर्शन एक एक बात को बिल्कुल परिभाषा करता है, अति व्याप्ति व्याप्ति असंभव न हो, तो यहां पर करना पड़ेगा प्रकाश का अर्थ जो आपका उज्ज्वल रोशनी, तो दोनों एक साथ बैठ नहीं सकते, एकता संभव नहीं, इसीलिए जीव ब्रह्म का जगत का एकता कभी हो नहीं सकता, जब भी होगा बाद होने के बाद, जब बाद हो जाएगा ना तब एक हो जाएगा, जगत के नाम रूप का हमने बाद कर दिया तो ब्रह्म के साथ एकता हो गई, जीते जी नहीं होगा, हाँ ये तो स्वाभाविक है भाई, दोनों विरोधी है ना, विरोधी चीज का कभी भी सामानाधिकरण होता ही नहीं व्यवहारिक जगत में भी, क्योंकि सूर्य और रजनी के समान दोनों का विरोध है जगत और ब्रह्म का, इसीलिए बोलते हैं कि बाद समानाधिकरण्य जगत और ब्रह्म का होता है। जैसे मान लो समझने के लिए, आप व्यवहारिक जगत में खूब जो है ना रचे पचे हो, करता हम भोगता हम, और आप चाहो कि बिल्कुल समाधि में डूब जाए तो संभव नहीं, समाधि में डूब जाएंगे तो व्यवहारिक जगत का बाद हो जाएगा, व्यवहार में स्प्रिया नहीं होगी, चाह नहीं होगी, इसी का नाम बाद समानाधिकरण, जगत का नाश नहीं होगा बाद होगा। देखिए बाद में नाश में अंतर है, नाश में क्या होता है कि वस्तु का अस्तित्व नहीं रहता है, बाद में वस्तु होती है परंतु आप वस्तु को उसी रूप से समझते हैं। जैसे मान लीजिए समझने के लिए, सांप और रस्सी का बाद समानाधिकरण है, जब देखते ना रस्सी तो आपको सांप दिखाई पड़ा, और जब तक सांप दिख रहा तब तक रस्सी दिखाई नहीं पड़ेगी, भयभीत होंगे, आतंकित होंगे, परेशान होंगे, जैसे रोशनी आई, अब रोशनी आते ही सांप का बाद हो गया, सांप का नाश नहीं हुआ बाद हो गया, देखिए रोशनी बंद करने के बाद वैसे ही साफ दिखाई पड़े, जैसे पहले था ना, वैसे पहले की तरह पूर्ववत मोटा ताजा टेढ़ा मेढ़ा फन उठाया हुआ दिखाई पड़ेगा। परंतु अब ज्ञान हो गया आपको, आपको हंसी आएगी, देखो कैसा दिख रहा। तो रोशनी आने के बाद रस्सी के सांप का बाद हो गया, घड़े का तो नाश होता है, घड़े पर डंडा मारे डंडा से घड़े का नाश हो गया, घड़े का बाद नहीं होता है। जब डंडा प्रहार किया तो घड़ा चूर चूर हो गया, तो बोले घड़ा का नाश हो गया। परंतु यहां पर उस सांप का नाश नहीं होता है, रोशनी से सांप का बाद हो गया, पूर्वत प्रतीत तो होगा परंतु अब आपको भय नहीं होगा। क्यों? बाद हो गया, निश्चय हो गया कि ये तो रस्सी है, बल्कि आपको हंसी आएगी, आनंद आएगा कि देखो रस्सी है और वह कैसी दिख रही है, टेढ़ा मेढ़ा सांप की तरह से, तो दोनों मंत्र है कि नहीं। जब बाद हो गया तब जाकर रस्सी से एकता हो गई, तो क्या बोलेंगे आप? अरे भाई रस्सी है वही सांप रूप से दिखाई दे रहा। आप बोल सकते ना, जो रस्सी है वही अब सांप रूप से दिखाई पड़ रहा था, पर है रस्सी। हाँ ऐसे ही है, जब ज्ञान हो गया तो जगत का नाश नहीं होगा, बाद हो जाएगा, सब दिखाई पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ये प्रेमपुरी का आपका सत्संग हॉल का सबका हो जाएगा, तंता भाव नहीं होगा, रहेगा सब, बाद हो जाएगा। बाद मन लगे सत्यत्व बुद्धि का नाश, सीधी बात, सत्यत्व सत्यत्व। पहले आप सत्य मानते थे ना, ये जगत सत्य है, बड़ा अच्छा है, बड़ा सुंदर है, इस बुद्धि का बाद हो जाएगा। जैसे कि रोशनी आने के बाद रस्सी में सांप जो दिखाई दे रहा था, उस सांप के सत्यत्व बुद्धि की निवृत्ति हो गई, बाद हो गया, हट गया। ऐसे ज्ञान होने के बाद आपको साफ साफ दिखाई पड़ेगा कि संसार तो बस एक तमाशा है, एक नाटक है। इसे नाटक नहीं करते, नाटक है तो बिल्कुल नाटक ही है। हाँ, विचार कर देखे ना तो नाटक, नाटक से अधिक कुछ भी नहीं। बचपन में नाटक कुछ और था, जवानी में नाटक कुछ और किया, बुढ़ापे में कुछ और नाटक हो रहा है कि नहीं। बाद में एक नाटक बच गया, वो नाटक क्या मालूम? आखिरी नाटक, लोग शरीर को उठाकर संसार में ले जाएंगे, अपने अपने हाथ परोसे के लेंगे, बस। ये तो नाटक बाकी है, फिर बोलेंगे जाओ, कोई आपको बुलाएगा नहीं, और कदाचित लौट के आएंगे ना, हाँ तो तांत्रिक को बुलाएंगे, बोलेंगे ये भूत है, भूत आ गया, शमशान में घड़े में बांध के छोड़ देंगे आपको। हाँ वो तो बात सही है, भूत नहीं होगा, परंतु भूत ना हो इसलिए आपको सावधान रहना है। पांच भूत पहले से है कि नहीं? पांच भूत, एक महात्मा आया करते थे ना, आप जानते हैं, भास्कर समित गिरी जी कैलाश के आचार्य थे, हमारे जूनियर आचार्य, तो बार बार बोलते थे व्यासपीठ मंच से, बड़े मंच से, जब कुछ सम्मेलन हो, 15-20 महात्मा हो मंडलेश्वर आवेश में, कि जो भाष्य पराण नहीं करेगा भूत भूत प्रेत बनेगा प्रेत। तो कई लोगों को बुरा लगता था, जो मंडलेश्वर थे वो करते नहीं, तो फिर जो है हमें बोलना पड़ता था बड़े महाराज को कि भाई पांच भूत तो पहले से हैं, पांच भूत तो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश भूत तो पहले से हैं, समझे कि पांच भूत लगे हुए पहले से हैं, तो पांच भूत तो आपको पकड़े हुए हैं, और भाष्य पाठ नहीं करेंगे तो एक छठवां भूत लग जाएगा, छह भूत। तो कौन सी बुरी बात कह दिया उन्होंने, ठीक ही तो कहा, पांच भूत पहले से पकड़े हुए हैं। तो ये जो सत्यत्व की प्रतीति, उसी का बाद हो जाने का नाम है कि बाद समानाधिकरण, अब हो गया ना पक्का। हाँ तो ब्रह्म का जगत के साथ बाद समानाधिकरण, और जीव और ब्रह्म के साथ मुख्य समानाधिकरण है। पर यहां पर जो पढ़ रहे हैं ना, बाद समानाधिकरण लेके चलना, पंचदशी कार्यक्रम अनुसार वही लिख रखे यहां पर। एवं उक्तेन प्रकारेण आचार्य वार्तिक कार्य निष्कर्म्य सिद्धौ, निष्कर्म सिद्धि ग्रंथ में सामानाधिकरण्यस्य बाधार्थत्वम बाद के लिए स्पष्ट साफ साफ इदितम कार्य कथितम कहा गया है। इति फलितम, इसी फलित बात को बता रहे। अतो वस्तु, इसलिए हो जाए समानाधिकरण। अतः कारणात, इसी कारण से ब्रह्माहम अस्मि इति वाक्ये तत्समानाधिकरण्यस्य बाधार्थत्वम अस्तु इत्यर्थ। बाद समानाधिकरण मान लेना चाहिए। अभी पंक्ति इसको याद नहीं होगी ना, बोलेगा कि देखो जीव और ब्रह्म में मुख्य समानाधिकरण होता है और ये बाद समानाधिकरण कैसे बोल रहे हैं। पर पंदसी कार्य के अनुसार आप बोल सकते, कोई क्षति नहीं है, क्योंकि यहां पर जीव का अर्थ इन्होंने क्या, सोपाधिक जीव। तो सोपाधि करेंगे तो उपाधि के विलय से विलय हो जाएगा, तो बात समानाधिकरण मान सकते। पर जिसके सिद्धांत से जीव का अर्थ है बिल्कुल प्रतिबिंबित चेतन, वहां पर मुख समानाधिकरण होगा। मतलब कि दर्पण में दिखाई पड़ने वाला जो आपका फेस है ना, बिल्कुल सत्य है। जो गर्दन पर है ना, वही दर्पण में है, ऐसा मानेंगे तब तो मुख्य समानाधिकरण मानना पड़ेगा। द्वैत की प्रतीति भ्रांति है। द्वैत मतलब कि दो, दर्पण हमने अपने गले माला पहनी तो वहां माला दिखाई पड़ता, चंदन यहां लगाए तो वहां दिखाई पड़ता, दोनों एक ही हो गए। तो प्रतिबिंबवाद के अनुसार जो गर्दन का मुख है ना, वही मुख दर्पण में है और सत्य है। न उत्पन्न हुआ न उसका बाद होगा, सीधी बात, न शीशे में नया अनिर्वचनीय रूप उत्पन्न हुआ न उसका ज्ञान से बाद करना है, दोनों एक ही है। खाली आपको एकता करनी है। ज्ञान से आपको केवल जीवो ब्रह्मैव की एकता करनी है, दोनों एक ही है, दो नहीं। द्वैत की प्रतीति भ्रांति है, ये सिद्धांत है प्रतिबिंबवाद का, इसको आगे दिखा रहे। कुछ नहीं है, बिल्कुल है तो एक ही दोनों। भाई जो आपके गर्दन का मुख है ना, वही तो दिखाई दे रहा शीशे में, तो केवल द्वैत की प्रतीति भ्रांति। और इसमें फायदा भी है, दर्पण में मुख मलिन है, बाल हमारे अस्त व्यस्त है, तो क्या करते हम, साफ करते ना। परंतु बिंब को तो हम देख नहीं पा रहे, अपने आंख से अपने गर्दन वाले मुख को तो देख नहीं पाते, पर दर्पण वाले मुख को देखा हमने। उस मुख को देखकर किसको सुधारते हैं, दर्पण वाले को कि बिंब को? हाँ, बिंब को सुधारते। ऐसे यहां पर करना आपको, भले संसार असत्य है, इसी बात को लिखा वार्तिककार ने, असत्य व वर्तमान स्थित्वा सत्यम पदम समीहते। ये वार्तिककार का श्लोक है। असत्य जो संसार है, मिथ्या जो संसार है, उसमें रहकर भी हम सत्य पद को समझ लेते हैं। जैसे कि दर्पण वाला जो मुख है, भले ही झूठा भले ही मिथ्या काल्पनिक है, उस काल्पनिक मुख को देखकर अपने असली चेहरा को सुधार लेते हैं। आंख में कीचड़ है, कीचड़ को हटाते, बाल को सुधार लेते हैं, धब्बे को मिटा देते हैं, अच्छे कपड़े पहन लेते, माला पहन लेते, होता है ना। ऐसे ही भले संसार असत्य मिथ्या काल्पनिक है, इस संसार में रहकर हम अपने असली चेहरा स्वरूप को समझ लेते हैं। क्योंकि आप बिंब को तो देख नहीं सकते, क्योंकि वह अशब्द है, अरूप है, अगंध वच्च है, उसमें रूप रस गंध कुछ भी नहीं है। परंतु प्रतिबिंब को देखकर, प्रतिबिंब मतलब कि आप अपने व्यवहारिक दशा को देखते हैं कि भाई हमारे मन में कामना हो रही, वासना हो रही, क्रोध आ रहा, लोभ आ रहा, मोह आ रहा। दूसरे की आंख में तो हम बड़े आराम से धूल झोंक सकते कि बिल्कुल ठीक ठाक मैं हूं, समाधिस्थ हूं, पर हमें तो पता है ना कि हमारे मन में क्या खटपट चल रहा, क्या हलचल चल रही है, कामना हो रहा है कि नहीं, क्रोध हो रहा है कि नहीं, लोभ हो रहा है कि नहीं, हमें तो पता है ना। आदमी दूसरे की आंख में धूल झोंक सकता है कि मैं 12 घंटा बैठता हूं रात को, बोल सकता, तो खुद को तो पता है ना कि मैं कितने घंटा बैठता हूं और या नहीं बैठता हूं। तो आप अपने अंतःकरण की दशा को देखकर अपना सुधार करते कि भाई हमें अपने स्वरूप तक जाना है, क्योंकि स्वरूप को उपलब्ध हो जाने के बाद उपनिषद मंत्र है ना, आत्मज्ञान होने का एक मापदंड है, थर्मामीटर है, वो कठोपनिषद में है, भिद्यते हृदय ग्रंथि जन्ति सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावर, ये मापदंड है। सारी ग्रंथियां छिन्न भिन्न हो जाती हैं, प्रमात्रीगत, प्रमेयगत, प्रमाणगत। प्रमात्री मतलब अंतःकरण, प्रमात्री का अर्थ अंतःकरणावच्छिन्न चेतन के ऊपर जो कामना है, वासना है, जो क्रोध है, लोभ है, मोह है, ये सारी ग्रंथियां छिन्न भिन्न हो जाती है प्रमात्रीगत। और प्रमेय बोलते हैं जो आपका ब्रह्म है, ईश्वर है, उसके विषय में संशय होता है कि वो नित्य है कि अनित्य है, सगुण है कि निर्गुण है, वो काला है कि गोरा, जो संशय होता है ना, तो प्रमेय गत संशय भी ग्रंथियां सब छिन्न भिन्न हो जाती हैं। और तीसरा प्रमाण है, प्रमाण मतलब कि वो आंख का विषय कि नहीं। देखो प्रमाण का अर्थ है प्रमीयते ज्ञायते अनेन इति प्रमाण, जिसके द्वारा कोई चीज समझी जाए उसका नाम प्रमाण है। जिसके द्वारा, आंख के द्वारा रूप समझते हैं, कान से शब्दों को सुनते हैं, नाक से खुशबू बदबू को जानते हैं, तो जिस साधन से विषय को जाना जाए उसका नाम प्रमाण है। जैसे देखो प्रत्यक्ष प्रमाण है रूप आदि ज्ञान के प्रति, ऐसे ही व्याप्ति ज्ञान प्रमाण है अनुमान के प्रति, व्याप्ति ज्ञान, लिंग परामर्श, ये सब कारण है। सादृश्य ज्ञान से उपमान का ज्ञान होता है। इसके बाद अब शाब्द ज्ञान से आगम को समझते हैं। अर्थापत्ति प्रमाण से क्या होता मालूम कि आप एक अनुपत्ति को देखकर दूसरे की कल्पना करते हैं कि भाई ये बहुत मोटा ताजा है, दिन में तो बिल्कुल खाता नहीं, उपवास करता, जरूर रात को खाता होगा। तो रात के भोजन की कल्पना अर्थापत्ति से हुई। कई बार अर्थापत्ति गलत भी आता है, कोई आदमी बहुत गरीब, फटा पुराना कपड़ा पहना है, चप्पल वैसे है, अर्थापति क्या किया, बहुत गरीब है पर है बड़ा मालदार, वो हमारे एक महात्मा है महाराष्ट्र में, बहुत बड़े मठाधीश, 500 एकड़ जमीन, 5-5 गांव के मन, ऐसे कपड़े यहां भी एक दो बार आए हमारे पास, आए गरीब भाई को पता ऊपर ऊपर आया था, आप देखकर क्या समझे, बहुत फक्कड़ महात्मा, उनका जो बाल है, शक्ल सूरत और जो खड़ाऊ पहनते लकड़ी का, जो क्या समझेंगे फक्कड़ महात्मा होगा ऐसे घूमने वाला। तो अर्थापत्तियां झूठी निकल गई ना, अर्थापत्ति सदा सही नहीं होती है, कई जगह झूठी भी हो जाती है, इसीलिए आगम प्रमाण मुख्य होता है शास्त्र। तो जो प्रमाणगत होता है ना संशय, वह भी दूर हो जाता है। वह जो तत्व है, तत्व साक्षात्कार होने के बाद प्रमात्रीगत, प्रमाणगत, प्रमेयगत सारे संशय ग्रंथियां छिन्न भिन्न हो जाते हैं। जैसे मान लो अब आपको भूख लगी है, अब भूख कितनी लगी है कि स्वसंवेद्य है, हम आप अनुमान नहीं कर सकते हैं, आपको पता है कि आपको कितनी जोर से भूख लगी, कैसी भूख लगी है, यह स्व मतलब अपना ही विषय है। ऐसे ही आत्मज्ञान हुआ कि नहीं हुआ, ये आपको स्वयं ही अपने ही अनुभव का विषय होता है, स्व संवेद। दूसरा तो कल्पना करता है कि शायद हो गया होगा, शायद नहीं हुआ होगा, तो कल्पना अपनी अपनी है। अब आगे देखिए, प्रकृति बोलते हैं माया कोई ना, प्रकृति कहिए माया कहिए प्रधान एक ही चीज है। प्रकृति शब्द दो अर्थ में प्रयोग होता है, एक प्रकृति शब्द का अर्थ है स्वभाव और दूसरा प्रकृति शब्द का अर्थ है जो कि स प्रपंच की कर्त्री है, उसको प्रकृति बोलते हैं योग की भाषा में, सांख्य की भाषा में प्रधान बोलते हैं, वेदांत की भाषा में माया बोलते हैं, है ना। तो प्रकृति है मतलब कि जन्म जन्मांतर के स्वभाव को, अविद्या को भी प्रकृति सबसे गीता में कई जगह कहा गया है। तो प्रत्येक प्राणी अपने प्रकृति के अनुसार बर्ताव करता है, का मतलब ये हुआ कि जन्म जन्मांतर का जैसा आपके चित्त में संस्कार है, जैसे मान लो आप मनुष्य जन्म लेने के पहले सिंह योनि से आए हैं, तो आपके स्वभाव में स्वाभाविक क्रौरीपना शौर्यपना रहेगा। यदि देवता योनि से आए हैं तो अपने आप आपके मन में शीतलता शांति, जरा आप शांति को पसंद करेंगे। तो जन्म जन्मांतर के संस्कार को भी प्रकृति सबसे गीता प्रयोग किया कि प्रत्येक आदमी अपने प्रकृति के अनुसार व्यवहार करता है। निग्रह किम कर सकते, निग्रह मतलब दुराग्रह क्या कर सकता है, यह तो हो गया प्रारब्ध। परंतु आप पुरुषार्थ से सब कुछ कर सकते। देखिए हमारी जो जीवन यात्रा है वो जीवन यात्रा के दो पहिए हैं, एक है प्रारब्ध दूसरा पुरुषार्थ है। तो प्रकृति प्रारब्ध तो आपने जन्म जन्मांतरिक कर्म हो गए, संस्कार हो गए, परंतु आप पुरुषार्थ से प्रकृति को बदल सकते हैं। जैसे कि विश्वामित्र जी की प्रकृति क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे, परंतु इतना पुरुषार्थ किया, इतना पुरुषार्थ किया, इतनी तपश्चर्या किया, साधना किया कि अपने प्रकृति को विलय कर दिया, ब्रह्मत्व को उपलब्ध हो गए। तो प्रारब्ध जैसा है वैसा तो हम लोग लेकर पैदा हुए ही है, परंतु अपने को पुरुषार्थ करना चाहिए। तो जो पुरुषार्थ है वह कैसे होता है, जब आप माता पिता बड़े बूढ़े शास्त्र की बात पर पूरा विश्वास करते हैं कि चाहे बात समझ में आए चाहे न आए, जो हमारी माता जी कह रहे, पिताजी कह रहे, बड़े बूढ़े कह रहे, शास्त्र कह रहा बिल्कुल सही है, जब आप इन बातों पर पूरा पहले विश्वास करते हैं, अब विश्वास करने के बाद आप विश्वामित्र के समान पुरुषार्थ करने लग जाते हैं, तो चाहे कैसा ही प्रारब्ध हो वह बदल जाता है। आपकी आयु 8 वर्ष की है पर पुरुषार्थ से 100 वर्ष हो जाती है। तो हमारा अधिकार है पुरुषार्थ में। नहीं, ये तो हो गया प्रारब्ध, कर सकते हैं योग से, योगाभ्यास से, पुरुषार्थ से कमती बेसी कर सकते हैं। हाँ, ज्यादा होता है। हाँ हाँ, उतना तो दिया आपको, प्रत्येक प्राणी की 100 वर्ष की आयु निर्धारित है, परंतु यदि आप अपनी पूरी आयु को भोगना चाहते तो सत्कर्म करना पड़ेगा। अच्छी गाड़ी आपके पास है 50 लाख की, मानो 60 लाख की है, यदि आपने गाड़ी को ठीक से चलाया नहीं तो 4 दिन में गड्ढे में गए तो कबाड़ा हो जाएगी। तो आप पर निर्भर करता है ना कि आप अपने आयु को किस प्रकार से बिताना चाह रही है, आपके ऊपर निर्भर करता है। पर हमारा कर्तव्य पुरुषार्थ करने में, प्रारब्ध का संबंध केवल स्थूल शरीर के साथ हमारे है, जो स्थूल शरीर है। देखो प्रारब्ध का मतलब होता है जिन कर्मों को लेकर शरीर का निर्माण हुआ उसका नाम है प्रारब्ध, और जो पुरुषार्थ है देह त्रय के साथ है, सूक्ष्म के साथ है, कारण के साथ, स्थूल के साथ है। यदि आप अच्छा पुरुषार्थ करते हैं इसी जन्म में ज्ञान हो गया। ज्ञान होने के बाद आप स्वरूप उपलब्ध हो जाएंगे। तो पुरुषार्थ का संबंध देहत्रय के साथ है, अब प्रारब्ध का संबंध स्थूल शरीर के साथ है, इसलिए हमारा अधिकार पुरुषार्थ करने में है। जैसा प्रारब्ध होगा वैसा तो होना ही है, पर पुरुषार्थ करेंगे तो आप प्रारब्ध को बड़े मजे से बदल सकते हैं। तो प्रकृति मतलब जन्म जन्मांतर का संस्कार, आदमी वैसा ही करता है। यदि आपने बड़े बूढ़े की बात पर विश्वास किया वेदांत गुरु वाक्य पर, तो पुरुषार्थ करके आप जीव से शिवत्व को उपलब्ध कर सकते हैं, पर होता है उल्टा। पुरुषार्थ करना चाहिए परमात्मा के प्राप्ति के लिए, ये कलयुग में ना कली भगवान सब उल्टी बुद्धि कर देते हैं। तो होता पुरुषार्थ दुनिया के लिए, पुरुषार्थ करना चाहिए भगवत प्राप्ति के लिए, परमात्मा प्राप्ति के लिए, पर हम पुरुषार्थ करते हैं दुनिया को पाने के लिए, और दुनिया हमेशा अप्राप्त है। अप्राप्त के प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। देखो कोई भी आज तक दुनिया को प्राप्त नहीं कर पाया। याति महाराज को 1000 वर्ष आयु मिली, क्या अनुभव सुनाया, भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता, हम भोग को भोग नहीं पाए बल्कि हम ही भुक्त हो गए, भोग लिए गए। तो पुरुषार्थ करना है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, और शरीर यात्रा को छोड़ दो प्रारब्ध के ऊपर, तो आप निश्चिंत होकर भजन में लग जाएंगे, सत्संग में लग जाएंगे। शेष कल सुनेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।